ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत प्रभु दयाल और पत्रकार राहुल त्रिपाठी।
स्वागत है आपका प्रोग्राम सुर्खियों में। आज हम बात करेंगे हॉरिफिक टेररिस्ट इंसिडेंट जो पहलगाम श्रीनगर के पास जम्मू एंड कश्मीर में हुआ मंगलवार को, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपालीज सिटीजन की जान गई। वेलकम एम्बेसडर दयाल, आपका स्वागत है। सबसे पहले हम सुनते हैं आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में क्या कहा।
देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी।
अम्बेसडर दयाल, आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा सुबह, आप इसको थोड़ा हमारे सुनने वालों को बता सकते हैं, ये प्रधानमंत्री यहाँ क्या संदेश देना चाहते हैं?
देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संदेश दिया है वो बहुत स्पष्ट है और उससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि भारत जो है वो उन लोगों को क्षमा नहीं करेगा, उन लोगों को बख्शेगा नहीं जिन्होंने आतंकवाद की हरकतें की हैं भारत के खिलाफ। देखिए, आपको याद होगा कि अभी हाल में ही तहव्वुर राना को एक्सट्राडाइट किया गया था। भारत ने कड़ी मेहनत के बाद ये हासिल किया था।
2008 का जो इंसिडेंट हुआ था 26/11 जिसमें कम से कम 166 लोग मारे गए थे, लश्कर-ए-तोयबा का अटैक था। जी बताइए,
उसके ये मास्टरमाइंड थे। तो भारत हमेशा से ये कह रहा था हम इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं, और ये करके दिखाया, क्योंकि ये तहव्वुर राना का एक्सट्राडिशन ये साबित करता है कि हम अगर इस कार्य में लगे कि हम उन लोगों को पनिश करेंगे जिन्होंने हमें आतंकवाद के थ्रू नुकसान पहुंचाया है, तो हम इस कार्य को करने में सफल होंगे। तो पहलगाम में जो ये बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है जिसमें लगभग 26 लोगों की मृत्यु हुई है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश ये स्पष्ट करता है कि इस टेररिस्ट एक्ट के पीछे जिनका हाथ है उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री ने तो अपनी बात एक तरह से स्पष्ट कही दी थी कि जब वो सऊदी अरेबिया के दौरे पे थे और उनको ये समाचार मिला तो उन्होंने उस दौरे को कट शॉर्ट किया और फौरन भारत आ गए और अपने यहाँ लौटने के पहले ही होम मिनिस्टर अमित शाह जी को कश्मीर भेज दिया गया था। उससे ये जाहिर होता है कि भारत सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है। और जब प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं जिन्होंने हमारे खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज की हैं, तो संदेश स्पष्ट होता है कि हम जो है पूरी तरह से इस कार्य में जुट जाएंगे कि जो टेररिस्ट हैं उनको पकड़ें और उनका खात्मा करें।
जैसे विगत 10 वर्षों में काफी कमी आई है ये टेररिस्ट इंसिडेंट्स में, जैसे पुलवामा के बाद कोई मेजर टेररिस्ट नहीं हुआ, उसके पहले एक पठानकोट में था, तो ये आप जो 10 साल का समय काल है इसमें आप कैसे देखते हैं, कैसे चीजें बदली हैं? और जैसे 2008 में मुंबई में अटैक हुआ था जिस केस में तहव्वुर राना को एक्सट्राडाइट किया गया है, तो किस तरह से परिस्थितियां बदली हैं वो थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं।
देखिए, आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे तो 2014 में उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को अपने स्वेरिंग इन में बुलाया था। उसके बाद रूस के दौरे से लौटते वक्त 2015 दिसंबर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अनशेड्यूल्ड विजिट की थी लाहौर की, अनशेड्यूल्ड हॉल्ट, क्योंकि वो मिस्टर नवाज शरीफ की फैमिली में एक वेडिंग थी उसको अटेंड करना चाहते थे और एक दोस्ताना एक संकेत था। लेकिन एक तरफ हमने इस तरह के दोस्ताना संकेत दिए, उसके विपरीत पाकिस्तान से वो पठानकोट अटैक हुआ जनवरी में ही, कुछ दिन बाद ही प्रधानमंत्री मोदी जी के लाहौर दौरे के बाद उन्होंने ये जवाबी कार्रवाई की। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की फौज नहीं चाहती कि इंडिया के साथ दोस्ती रहे। पाकिस्तान की फौज जो है वो अपने देश में दबदबा बना के रखती है कि हम जो है हिंदुस्तान से लड़ सकते हैं, हम ही पाकिस्तान को बचाने वाले हैं, तो वो नहीं चाहती थी कि इस तरह के दोस्ताना ताल्लुकात हों। तो बहरहाल जनवरी में पठानकोट अटैक हुआ, उसके बाद सितंबर में उसी साल उरी अटैक हुआ।
कल सुरक्षा सलाहकार समिति प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कुछ बड़े और कड़े फैसले लिए, इसकी जानकारी हमें कल विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी ने देर रात दी। आइए सुनते हैं ये कड़े कदम क्या है।
Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad.
Ambassador Dayal, आपने सुना होगा विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कुछ CCS के कल डिसीजन बताए थे, क्या आप हमारे सुनने वालों को, श्रोताओं को बता सकते हैं ये क्या डिसीजन है और इससे किस तरह का प्रभाव पड़ेगा आने वाले दिनों में?
देखिए, ये पांच बड़े डिसीजन लिए गए हैं। पहला तो ये है कि इंडस वाटर्स ट्रीटी को अभी सस्पेंड कर दिया जाएगा, अबेंस में रखा जाएगा। दूसरा ये कि जो अटारी चेक पोस्ट है पाकिस्तान के साथ उसको बंद कर दिया जाए। तीसरा ये कि SAARC वीजा एग्जेम्पशन स्कीम पे जो पाकिस्तानी नेशनल्स आए हुए हैं अधिकतर स्टूडेंट्स के तौर पर, उनके वीजा अब कैंसिल होंगे, अब उनको वापस जाना होगा। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन ये है कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री अटैचेस हैं यहाँ हाई कमीशन में, जो डिफेंस, एयर और नेवल अटैचेस कहलाते हैं, उनको अपने सपोर्ट स्टाफ के साथ अब पर्सना नॉन ग्राटा बना दिया गया, मतलब उनको यहाँ पर नहीं रहने की इजाजत है और वो फौरन वापस पाकिस्तान जाएं। और इसके अलावा जो पाकिस्तान हाई कमीशन है यहाँ पर, उसकी जो संख्या है लोगों की वो 55 से कम करके 30 कर दी जाएगी। तो ये पांच बड़े महत्वपूर्ण डिसीजंस हैं और देखिए इनका हमारी सिक्योरिटी से बड़ा घना संबंध है। अब जैसे पहली बात यह है कि जो अटारी चेक पोस्ट को बंद करना, अटारी चेक पोस्ट के जरिए कुछ ऐसे लोग दाखिल हो जाते हैं जो हमारी सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाते हैं। इसके अलावा अब SAARC वीजा एग्जेम्पशन स्कीम पे बहुत पाकिस्तानी नेशनल्स यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए और उनकी हरकतें भी कुछ ऐसी है कि वो हमें नुकसानदेह साबित होते हैं। इसके अलावा देखिए, जो पाकिस्तान हाई कमीशन तो एक जासूसों का अड्डा है ही, डेन ऑफ स्पाइज इसको कहते हैं, वहां से ऐसी हरकतें होती हैं जो हमारी सिक्योरिटी को बड़ा एडवर्सली इम्पैक्ट करती हैं। वहां के जो ऑफिशियल्स हैं वो उन लोगों से संपर्क बना के रखते हैं जो कि उनकी सहायता कर सकते हैं और भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
इसमें सर एक सबसे बड़ा फैसला जो सबसे पहले नंबर पे, वो इंडस वाटर ट्रीटी, 1960 की एक ट्रीटी थी जो कि अबेंस में रख दी गई है, तो इसका क्या असर पड़ेगा ये थोड़ा हमारे सुनने वालों को बताएं।
देखिए, जब हमने ये कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी को अब अबेंस में रखा जाएगा, तो हमने ये कहा कि इस पे होल्ड है, अभी इस ट्रीटी पे हम अब काम नहीं करेंगे। अभी हमने इसको टर्मिनेट नहीं किया है, इसको पूरी तरह खत्म नहीं किया, लेकिन हमने इसको सस्पेंड करके रख दिया। इसके मतलब अगर ये ट्रीटी सस्पेंडेड है तो इसके अंतर्गत जो हमारे ऑब्लिगेशंस हैं वो भी सस्पेंडेड है, मतलब हमें अब उस ट्रीटी के तहत जो कार्य करना होता था हम अब नहीं करेंगे। अब मिसाल के तौर पे जो इंडस रिवर सिस्टम है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां का जो एग्रीकल्चर है, खासतौर पे पंजाब प्रोविंस, वो इंडस रिवर से ही उसको पानी मिलता है। वो जो तीन वेस्टर्न रिवर्स हैं, इंडस रिवर, झेलम और चेनाब, इन्हीं के पानी से पूरी वहां सिंचाई होती है और एग्रीकल्चर चलता है। और साथ ही साथ वहां जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी अधिकतर हाइड्रो इलेक्ट्रिक सोर्सेज से मीट होती हैं, जो कि ये इंडस वाटर से ही होता है। तो अगर हम इस ट्रीटी को अबेंस में रख देते हैं तो इसका साफ ये अर्थ होता है कि हम अब कोई ऐसा कार्य करने से नहीं अपने आप को रोकेंगे जो हमारे हित में हो, और चाहे इस ट्रीटी से वो प्रतिबद्ध हो, लेकिन हम आज के अब इसको ट्रीटी को नजरअंदाज करेंगे, ये हमारे लिए सस्पेंडेड है, और ना हम डेटा देंगे जैसे जब फ्लड्स का डेटा।
सर, ये एक CCS ने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी रेज किया कि CCS ने सारा सिक्योरिटी को रिव्यू किया और सारे फोर्सेस को हाई विजिल मेंटेन करने के बोला, और आज जैसा कि हम सुनने में आ रहा है कि आर्मी चीफ विजिट कर रहे हैं JNK, सो इसका इससे क्या संदेश जाता है?
देखिए, इससे ये संदेश जाता है कि ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल, हम जो उचित समझेंगे हम करेंगे। और देखिए, पाकिस्तान में खलबली मच गई है, जहां तक मैंने उनकी मीडिया में पढ़ा है वहां पर जो सरकार है और लोग हैं बहुत परेशान हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि भारत अब बहुत सख्त कार्रवाई करने जा रहा है और इससे उनको बहुत नुकसान होगा। तो लेकिन देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। अब वो टेररिज्म स्पॉन्सर करते आए हैं और हमने उनको लाख रोकने की कोशिश की, लेकिन वो टेररिस्ट ही एक्टिविटीज करते रहे हैं। तो उनको अब ये लग रहा है कि भारत जो है अब वो कुछ कड़ा कदम उठाएगा, और क्या कदम उठाएगा वो कहा नहीं जा सकता। देखिए, जैसा मैंने कहा, ऑल ऑप्शन आर ऑन द टेबल, भारत सरकार जो उचित समझेगी वो करेगी।
सर, ये तारीख पे जो बंद करने का आदेश दिया है, तो जो लोग उधर चले गए हैं वो वापस कैसे आएंगे, उनके पास कितना समय है, ये थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं।
उनको कह दिया गया है कि वो 1 मई के पहले वापस आ जाएं, जो पाकिस्तान में हैं वो आ जाए वापस, और जो यहाँ पे हैं पाकिस्तानी लोग वो चले जाए वापस।
अच्छा,
तो ये 1 मई तक की डेडलाइन कुछ हमने।
और ये जो साक वीजा एग्जेम्पशन स्कीम थी, ये जिसमें पाकिस्तानी नेशनल्स को परमिट करते थे इंडिया आने के लिए, इसमें एक 48 घंटे की मियाद डाल दी गई है, जिससे वो थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं कि क्या उससे असर पड़ेगा।
देखिए, साक वीजा एग्जेम्पशन स्कीम जो है ये एक दोस्ताना ताल्लुकात के तहत अपनाई गई थी, लेकिन देखिए इसका बहुत नाजायज फायदा उठाया है कुछ दूसरे देशों के स्टूडेंट्स ने, क्योंकि उनकी कंट्रीज उनको यूज कर रही हैं स्पाइस, और यहाँ पर अच्छी तरह से रहने के बजाय वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि वो हमारी सिक्योरिटी के विपरीत। तो इसलिए ये सार्क का जो ये वीजा स्कीम है इसको खत्म करना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि इससे हमें नुकसान पहुंचा रहा था। अच्छा, आपने एक सवाल पूछा था कि क्यों कई सालों से टेररिस्ट एक्टिविटीज बंद थी, मैं उसका जवाब दे रहा था। देखिए, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की पुलवामा स्ट्राइक अटैक के बाद, तो पाकिस्तान घबरा गया और उसको संदेश चला गया कि हिंदुस्तान जो है ये बड़ा सख्त कदम उठा सकता है, इसलिए वो कई साल तक चुप बैठा रहा।
आपने ये भी देखा होगा कि ये डाउनसाइज इसका क्या असर पड़ेगा यहाँ पे, आप जैसा कह रहे थे कि ये इट इज अ डेन ऑफ स्पाइस।
बिल्कुल, पाकिस्तान हाई कमीशन को कहते हैं डेन ऑफ स्पाइस, ये जासूसों का अड्डा है, और ये यहाँ पर पाकिस्तान हाई कमीशन के ऑफिशियल्स की पोशाक पहनकर जो है ISI के लोग काम करते हैं, वो सब जासूस हैं, और वो गलत सलत लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ISI के स्लीपर सेल्स होते हैं, स्लीपर सेल्स मतलब जो कि छुपे रहते हैं और ISI के लिए काम करते हैं। तो ये जरूरी है कि पाकिस्तान हाई कमीशन का जो साइज है वो कम कर दिया जाए, और देखिए मेरा तो ये काफी पहले से मानना है कि ये पाकिस्तान हाई कमीशन को बंद ही कर देना चाहिए। ये जो है ये हमेशा खतरे की एक जड़ रहती है, इससे हमें सिर्फ नुकसान है, और पाकिस्तान के साथ किसी तरह के डिप्लोमेटिक संबंध रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो टेररिस्ट कंट्री है। देखिए, जब मैं बाहर पोस्टेड था तो मैं दूसरी कंट्रीज से बात करता था कि पाकिस्तान जो इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज करता है, तो वो कहते थे आप उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्यों रखते हैं, उनके एम्बेसी को बंद कीजिए। तो अगर भारत की सरकार अब इनके हाई कमीशन की जो स्ट्रेंथ है कम कर रही है, 55 से अब 30 कर रही है, तो ये अच्छा कदम है, क्योंकि जो हाई कमीशन की क्षमता है गंदे काम करने की वो कम होगी।
सर, एक और इसमें फैसला था, ये डिफेंस मिलिट्री नेवल एंड एयर एडवाइजर इन द पाकिस्तान हाई कमीशन, इससे क्या मैसेज जाता है?
ये जो उनके डिफेंस अटैचेस हैं, मिलिट्री नेवल और एयर एडवाइजर, ये हमारे डिफेंस फोर्सेस के कुछ लो लेवल ऑफिशियल्स के साथ ऐसे संबंध रखाने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे सिक्योरिटी नीड्स के खिलाफ काम करें और उनकी सहायता करें। मतलब ये तो बड़े स्पाइस हैं जो कि डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं। इसके अलावा अब इनको वापस हम भेज रहे हैं, तो पाकिस्तान को ये संदेश चला जाना चाहिए कि अब अगर जरूरत पड़ी, अगर हमने ठीक समझा, तो हम लड़ाई की तरफ भी कदम उठा सकते हैं, इसीलिए इन डिफेंस अटैचेस को यहाँ से बाहर करना जरूरी।
बहुत बहुत धन्यवाद एम्बेसडर दयाल, सारी जानकारी देने के लिए शुक्रिया।
शुक्रिया।
अभी आप सुन रहे थे आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत प्रभु दयाल और पत्रकार राहुल त्रिपाठी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdetalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।